लंदन के ग्रेनफेल टावर में लगी आग में हुए जानमाल के नुकसान को देखते हुए अब न्यू साउथ वेल्स भी विक्टोरिया की तरह ऊंची इमारतों में अत्यधिक ज्वलनशील क्लैडिंग की जांच के आदेश दे सकता है। न्यू साउथ वेल्स की सरकार का कहना है कि वे इस बारे में अगले हफ्ते घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही जांच की घोषणा विक्टोरिया राज ने अर्जेंट बेसिस पर शुरू कर दी है। हालांकि फेडरल सरकार का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में हालात ब्रिटेन से काफी अलग हैं। दरअसल लंदन की ग्रेनफेल टावर में हादसे में 80 लोगों के मारे जाने से दुनिया भर की सरकारें हरकत में आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सरकार राज्यों से ज्वलनशील क्लैडिंग के इस्तेमाल का रिव्यू करने को कह रही है और कुछ राज्य सरकारों ने तो इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। विक्टोरिया सरकार के अनुसार वो इमारतों को सुरक्षा मानकों के आधार पर ऑडिट करेगी और उसकी अंतरिम रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में जारी कर देगी। लेबर पार्टी के पूर्व डिप्टी प्रीमियर जॉन थवेटिस को इस फास्ट ट्रैक्ड इन्वेस्टिगेशन का को चेयर बनाया गया है। वो चेतावनी देते हैं कि देश भर में हजारों इमारतों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे हो सकते हैं।
There does seem to be a problem of non-compliance right around Australia, and we have to change that. Near enough is not good enough, and that means people in the building industry have to understand they've got to follow the rules, and they have to understand they're likely to be audited if they don't.
टास्क फोर्स में उनके साथ राज्य के पूर्व प्रीमियर टेड बेल्यू भी होंगे, जिनके अनुसार जितनी जल्दी असुरक्षित इमारतों की पहचान हो उतना अच्छा है।
We saw in London one of the most horrific scenes I think anybody has seen in recent years. We don't want to see anything like that anywhere in the world, but we need to make sure that we do the right thing here.
ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2014 में मेलबर्न के डॉकलैंड में लार्कोज बिल्डिंग में लगी भयावह आग के लिए भी ग्रेनफेल टावर की तरह की ही क्लैडिंग जिम्मेदार हो सकती है। उसके बाद से विक्टोरिया में दर्जनों इमारतों का ऑडिट किया जा चुका है और कई में रेगुलेशंस की अवहेलना मिली है। इसीलिए टास्क फोर्स को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे ऑडिटिंग और सुधार की प्रक्रिया को तेज कर सकें। लेकिन फेडरल इंडस्ट्री मिनिस्टर क्रेग लॉन्दी ने एबीसी से कहा कि लार्कोज इमारत में लगी आग की तुलना ग्रेनफेल से करना सही नहीं है।
You're talking about a very different regulatory regime between our national construction code and what was in place for Grenfell. I don't want to cast aspersions on my UK counterparts. I don't know their system well enough. What I do know is the national construction code, and I want to assure your listeners that even when we do get a situation like La Crosse, the system in its entirety comes into play. And, you know, that night 600 people were removed from that dangerous environment.
न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने भी इस पर अपनी रणनीति तैयार कर ली है और राज्य के प्लानिंग मिनिस्टर एंथनी रॉबर्ट्स और फेडरल मिनिस्टर माइकल कीनन अगले हफ्ते इस बारे में घोषणा करने वाले हैं। हालांकि इस बारे में डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी श्री लॉन्डी का कहना है कि NSW कंप्लायंस को और सख्त बना सकता है।
They are working right now, and Minister Roberts and Minister Keane are working on the compliance side of the fence and the accreditation of the individual that assesses the system. And that's something that's been heard by us at the Building Ministers Forum a lot over the past 6 months, that we need to do a lot of work on who is actually signing off.
इस बीच क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन का प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल भी सेफ्टी वॉच में तब से रखा गया है जब ये पता चला कि इसमें जो क्लैडिंग लगी है वो फायर रिटार्डेंट नहीं है। क्वींसलैंड में जांच चल रही है और अगले महीने तक आने वाली रिपोर्ट में उन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की पहचान की जाएगी जो कंप्लायंस नहीं करते। दूसरी तरफ फेडरल इंडस्ट्री मिनिस्टर क्रेग लॉन्दी मानते हैं कि अभी ये जानकारी उपलब्ध नहीं है कि देश में कितनी इमारतों में ज्वलनशील क्लैडिंग लगी है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि जांच कर क्लैडिंग को हटाने के खर्च की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।